ده فرق واحد عشر ده. اچھا جی, میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب آپ آزادی کو ڈیفائن کریں گے ایبسنس آف لمیٹیشنز کے, تو آپ کے سامنے جو امیڈیٹلی تین طرح کے آبسٹیکل ہر آدمی کے, ہر معاشرے کے آدمی کے سامنے تین آبسٹیکلز آئیں گے, اور ایک فزیکل آبسٹیکل ہے, ایک سوشل آبسٹیکل ہے, اور ایک لیگل آبسٹیکل ہے. فزیکل آبسٹیکلز کو دور کرنے کا جدیدیت نے, ماڈرنزم نے کیا حل پیش کیا؟ انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ تم فزیکلی لمیٹڈ ہو, لیکن چونکہ تمہارے پاس عقل ہے, تجربہ ہے, اور تفکر ہے, اور وجدان ہے, ان سب کی مدد سے تم ایک ایسی علمیت پیدا کر سکتے ہو جو کہ سائنٹیفک نالج ہے, اور وہ سائنٹیفک نالج تمہاری فزیکل لمیٹیشنز کو اوور کم کرے گی. لہذا وہ معاشرے جو آزادی کے حصول کی خواہش کے لیے وجود میں آتے ہیں, ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو علمیت کی ترتیب میں سب سے اوپر لے کے جائیں, یعنی کہ سب سے زیادہ بہتر علم کون سا ہوگا؟ جو سب سے زیادہ سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکلی ڈریون ہو. اگر وہ علم سائنٹیفک ہوگا اور وہ اس میں اضافہ ہوگا اور اس میں ترقی ہوگی, تو حقیقتاً کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں آپ کی فزیکل لمیٹیشنز اوور کم ہونی شروع ہو جائیں گی, اور جیسے جیسے آپ کی فزیکل لمیٹیشنز اوور کم ہوں گی, آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ آزاد محسوس کریں گے. آپ کی آزادی میں لامتناہی اضافے کی ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے؟ سائنٹیفک میتھڈالوجی نے اٹھائی ہے. لہذا جب آپ علم میں اضافہ ہوگا, سائنٹیفک علم میں اضافہ ہوگا, تو ویسے ویسے آپ اس معاشرے کے اندر لوگوں کی حقیقی آزادی میں یقینی اضافہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. حقیقی آزادی میں یقینی اضافہ کرنے کے لیے جدیدیت نے آپ کو ایک ایسے علم کی طرف دعوت دی جو کہ سائنٹیفک نالج تھی, اور اس سائنٹیفک نالج نے آپ کے علم میں اضافہ ہی نہیں کیا بلکہ بنیادی طور پر آپ کی آزادی میں بھی اضافہ کرتے چلے گئے. عیسائیت جو علم آپ کو لائی تھی, وہ علمیت آپ کی آزادی میں اضافہ نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ آپ کی بندگی میں اضافہ کر رہی تھی, آپ کو بندہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی. تو بندگی میں اضافہ کرنے کی کوشش جو ہوتی ہے وہ ایک الگ قسم کی معاشرت قائم کرتی ہے, اور آزادی میں اضافے کی خواہش ایک الگ قسم کا معاشرہ قائم کرتی ہے. دوسری طرح کی جو لمیٹیشن ہے وہ سوشل لمیٹیشنز ہے. آپ لوگ جو ہے وہ کیسے فیملی اسٹرکچر میں رہنا پسند کرتے ہیں؟ جوائنٹ فیملی اسٹرکچر میں رہنا پسند کرتے ہیں, نیوکلیئر فیملی اسٹرکچر میں رہنا پسند کرتے ہیں, سنگل پیرنٹ فیملی اسٹرکچر میں رہنا پسند کرتے ہیں, یا اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں؟ صحیح ہے. اچھا, آپ کے شہر میں زیادہ تر لوگ کس فیملی اسٹرکچر میں رہتے ہیں؟ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. تو جوائنٹ فیملی میں جب رہتے ہیں تو وہ بچے جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں ان کے اوپر بہت سارے ان کے قریبی رشتہ دار جو گھر میں رہتے ہیں نظر رکھتے ہیں, जब वो ज़्यादा लोग नज़र रखते हैं तो बच्चे के लिए कोई ऐसी ज़िंदगी गुजारना जो उस फैमिली की रिवायात के ख़िलाफ़ हो, उस फैमिली की अकदार के ख़िलाफ़ हो, उस फैमिली की वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हो, करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो फ़ौरन पकड़ा जाता है, या तो उसका कोई कज़न, कोई भाई, कोई रिश्ते की बहन बता देती है जाके माँ बाप को, नहीं तो चाचा मामा खुद ही देख लेता है। तो उसमें जो लोग रहते हैं, आप लोग मुतमईन हैं, खुश हैं या दुखी हैं? आप लोग खुश हैं? आप लोग, अच्छा, ये भी अच्छी बात है कि आप लोग खुश हैं। लेकिन आम तौर पे मुझ जैसे जो लोग होते हैं जो के, तो वो नाखुश रहते हैं, जो शैतान के बहकावे में जल्दी आते हैं, वो कहते हैं ये क्या मुसीबत है यार, ये कभी चाचा को पूछो, कभी मामा को पूछो, कभी दादा को पूछो, सब ये सब लोग से मेरी जान छूट जाए तो अच्छा है। इस तरह के भी लोग होते हैं, आप लोग तो नहीं हैं, लेकिन इस तरह के लोग होते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर सबसे तेज़ी से टूटने वाला स्ट्रक्चर है। अभी जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ आई हैं पंजाब के अंदर, ब्रादरी सिस्टम बड़ी तेज़ी से टूटा है। शहरों के अंदर जॉइंट फैमिलीज अफोर्डेबल ही नहीं है। अगर आप 50 लाख का फ्लैट ले रहे हैं जिसमें दो बेडरूम है, तो उसमें जॉइंट फैमिली कैसे सस्टेन करेगी? जैसे ही एक बाप के तीन बेटे हैं, उसमें एक बेटे की शादी होगी, तो जो एक बेडरूम माँ बाप का हो जाएगा, एक बेडरूम दूसरे बेटे का हो जाएगा, तो फिर दूसरे बेटे की अगर शादी होगी तो फैमिली स्प्लिट होना ज़रूरी है। इतने पैसे बाप के पास नहीं है कि 50 लाख का एक और फ्लैट खरीदे, तो बेटे को अलग कर देगा। है? ज़मीन बहुत महंगी है कराची में, तो अब तुम क्या करते हो, वो किराए पे चला जाता है। यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 50 लाख रुपए कमाना बहुत मुश्किल है। तो वो क्या करता है, मजबूरन फैमिली ब्रेकअप होते हैं, ठीक है। और कराची के अंदर बहुत तेज़ी से जॉइंट फैमिलीज ब्रेक हुई हैं, और जॉइंट फैमिलीज के ब्रेक होने के साथ साथ ग्रेजुअली जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज में भी ब्रेकअप आने शुरू हो गए। डिवोर्स रेट आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान के अंदर तेज़ी से बढ़ा है, यानी कि सिंगल पेरेंट फैमिलीज भी हैं, ठीक है। और जो लोग अकेले भी रह रहे हैं, अभी कम है लेकिन फ्यूचर में, जैसे इंग्लैंड की मैं एग्जांपल दूं आपको, तो इंग्लैंड के अंदर अभी सर्वे हुआ तो 70% जो गोरे थे वो या तो अपने फ्लैट में अकेले बैठे होते थे या फिर हजारों लोगों के बीच में होते थे। तो दुनिया में कई तरह के सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, तो माशरा भी आपकी आजादी में रुकावटें और रखने पैदा करता रहता है। इस किस्म के माशरों में आजादी के इम्कानात पैदा करने के लिए जो माशरत कायम की जदीदियत ने, मॉडर्निज्म ने, उसे हम कहते हैं सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी, किसी को पता है भाई सिविल सोसाइटी कैसी सोसाइटी होती है? आप लोग क्या समझते हैं सिविल सोसाइटी को? अच्छा, मैं सिविल सोसाइटी पे जाने से पहले ये पूछता हूं कि किस किस तरह की सोसाइटीज होती हैं, किस किस तरह की सोसाइटीज होती हैं? मसलन रिवायती माशरे होते हैं और कबायली माशरे होते हैं, मजहबी माशरे होते हैं, पैट्रियार्किकल सोसाइटीज होती हैं, मैट्रियार्किकल सोसाइटीज होती हैं। यानी कि कबायली माशरे ऐसे माशरे होते हैं जिनमें माशरे के अंदर मेरी माशरती हैसियत का तायुन मेरे कबायली एसोसिएशन से होता है। यानी कि मैं कबायली माशरत की मेंबरशिप हासिल करता हूँ अपने चॉइस से नहीं, क्योंकि मैं पैदा हो गया हूँ, मैं किसी कबीले में पैदा हो गया हूँ, मैं आराई हूँ या मैं गखड़ हूँ या मैं कुकी खील हूँ या क्या कहते हैं गखड़ हूँ या राजपूत हूँ या चौधरी हूँ, कौन सा मेरी कास्ट है, जो मेरा ट्राइब होगा वो मेरी शनाख्त बनेगा। इसी तरीके से बाज माशरे होते हैं मजहबी माशरे, कि मैं एक मजहब में दाखिल हो जाता हूँ और उस मजहब के मानने वाले चाहे किसी भी कबीले या किसी भी रंग व नस्ल के हों वो मेरे भाई बन जाते हैं, मैं उस माशरे का हिस्सा बन जाता हूँ। इसी तरीके से बाज माशरतें होती हैं उनको हम कहते हैं पैट्रियार्किकल सोसाइटीज। पैट्रियार्की के अंदर क्या होता है, पैट्रियार्किकल सोसाइटीज़ ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जो मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ होती हैं, जिसमें ताकत किसके पास होती है, मर्द के पास होती है, सारे फैसले कौन करते हैं, मर्द करते हैं। इस तरह के माशरों को हम पैट्रियार्किकल सोसाइटीज़ कहते हैं। मैट्रियार्किकल सोसाइटीज़ कैसी होती हैं, मैट्रियार्किकल सोसाइटीज़ ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जिसमें ताकत सारी की सारी ताकत औरत के पास होती है, तमाम फैसले औरतें करती हैं, इस तरह के माशरों को हम मैट्रियार्किकल सोसाइटीज़ कहते हैं। लेकिन ये तमाम रिवायती माशरती जो इज्तमाहीतें हैं ये सब की सब किसी ना किसी सतह पर फ़र्द की आज़ादी की नफ़ी करती हैं। पैट्रियार्किकल सोसाइटी में फ़र्द की आज़ादी की नफ़ी किस तरह होती है, क्योंकि मर्द जो फैसला करता है वो सबको कबूल करना पड़ता है, तो औरतों को भी कबूल करना पड़ता है, तो अगर औरतों को कबूल करना पड़ता है तो औरतों की आज़ादी की नफ़ी होती है, ठीक है। मैट्रियार्किक सोसाइटी के अंदर सारे फैसले चूँकि औरत करती है लिहाजा मर्द की आज़ादी मुतासर होती है। मजहबी माशरों के अंदर तमाम माशरती अकदार का तायुन मजहबी बुनियादों पर किया जाता है, तो गैर मजहबी ज़िंदगी की नफ़ी होती है और गैर मजहबी वैल्यूज़ और गैर मजहबी तर्ज ज़िंदगी की जड़ें काटी जाती हैं, लिहाजा जो गैर मजहबी ज़िंदगी गुजारना चाहता है उसकी आज़ादी की नफ़ी होती है। इसी तरीके से वो माशरे जो कि कबाइली माशरे होते हैं, अगर आप कबाइल की वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ चलेंगे तो कबाइल आपको अपने से बाहर निकाल देगा। अगर मैं कबीले से बाहर निकल जाऊं तो कोई दूसरा कबीला मुझे कबूल नहीं करेगा, लिहाजा मेरी कोई माशरती हैसियत नहीं रहती। तो प्रॉब्लम ये था, तो मगरिब के अंदर प्रॉब्लम ये था कि मैं माशरती सतह पर अपनी आज़ादी का इजहार कैसे करूं। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए आपको डेवलप करनी पड़ेगी सिविल सोसाइटी। तो आप लोगों के ख्याल में सिविल सोसाइटी कैसी सोसाइटी होती है, जैसे हमारे यहाँ सब लोग कहते हैं हम लोग सिविल सोसाइटी की मदद से ये मसला हल कर लेंगे, सिविल सोसाइटी की कोशिशों के नतीजे में अदलिया आज़ाद हुए वगैरह वगैरह, तो ये क्या होती है सिविल सोसाइटी है? वो है क्या, चल रहा है क्या ये? अच्छा, हाँ इख्तिसार के साथ बताइएगा। नहीं मैं अब नहीं समझ में आई थी, सब लोग मिलके फैसला करते हैं। कहाँ कोई है ऐसी जगह जहाँ सब लोग मिलके मसलन कहाँ करते हैं तुम्हें तुम्हारे किसी और चीज के प्रेशर में करें ना करें वो लोग खुद प्रेशर डालते हैं या नहीं सिविल सोसाइटी वाले किसी पे प्रेशर डालते हैं या नहीं अच्छा और कोई भाई इस तरह की हाँ चलो दे दो आगे दे दो आवाम के नुमाइंदों के पास नहीं तो सियासी सियासी है माशरती कुव्वत क्या होती है माशरती अच्छा ठीक है चलो आवाम नास की अक्सरियत जहाँ पे फैसले करती है उसे सिविल सोसाइटी कहते हैं ये देखिए भाई सिविल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें इंसानों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसकी बुनियाद उनके मफादात होते हैं मोस्ट लाइकली उनके माशी मफादात यानी कि सिविल सोसाइटी इज़ द सोसाइटी इन विच इंडिविजुअल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इम्पर्सनल बॉन्ड्स ऑफ इंटरेस्ट सिविल ये कौन कह रहा है ये माइकल इग्नाइटिव की डेफिनेशन है बहुत ऊंचा आदमी है सिविल सोसाइटी पर अथॉरिटी है गैलनर का ये ख्याल है कि सिविल सोसाइटी कैसी सोसाइटी होती है सिविल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें लोग अपने मफादात में इजाफे के लिए रिश्ता बनाते हैं और अपने मफादात के को नुकसान पहुंचने की वजह से रिश्ता तोड़ देते हैं और रिश्ते बनाने और रिश्ते तोड़ने का ये अमल मुस्तकिल और मुसलसिल चलता रहता है और सिविल सोसाइटी में हाईएस्ट ऑर्डर इंटरेस्ट क्या होता है इंसान का आला तरीन मफाद क्या होता है इंसान का आला तरीन मफाद सिविल सोसाइटी में तहफ़्फ़ुज़े इनफ़िरादी आज़ादी होता है सही है हाईएस्ट ऑर्डर इंटरेस्ट क्या है मेरा इनफरादी आज़ादी सही है अब सवाल यह है कि अगर मेरा हाईएस्ट ऑर्डर इंटरेस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम हो जाए तो मेरी फैमिली के अंदर मेरे टकराव मेरे फैमिली मेंबर से बढ़ जाएंगे मेरे लिए मेरी आज़ादी अगर बुनियादी हैसियत रख जाए तो मेरे कबीले के साथ मेरे टकराव बढ़ जाएंगे मेरी इनफरादी आज़ादी मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाए तो मेरे लिए मेरे मजहबी जो इज्तिमाईयत है वो उसके साथ टकराव बढ़ जाएंगे तो बुनियादी तौर पर अगर मैं आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ ना भाई तो आइडियली मुझे अकेले रहना चाहिए जो मैं करूं, जब उठूं, जब सोऊं, जो मेरी जिंदगी में आए वो मैं करूं। अगर मैं ज्यादा लोगों के बीच में रहूंगा तो ज्यादा टकराव होंगे, कम लोगों के बीच में रहूंगा कम टकराव होंगे, अकेले रहूंगा तो बिल्कुल टकराव नहीं होगा। तो अगर मैं अकेले रहना चाहूं, फर्ज किया कि मैंने ये फैसला किया कि भाई ये जो मेरा बाप है ये हर वक्त मेरे पे पाबंदियां लगाता रहता है, तो मैं अपने बाप को ऐसा करता हूं ओल्ड हाउस में छोड़ के आ जाता हूं। ऐसे ही तो ओल्ड हाउस नहीं सजे हुए ना भाई पूरी दुनिया में। हमारे यहां भी आप लोगों को मुबारक हो, पाकिस्तान में भी ओल्ड हाउस खुल गए हैं, पता है आप लोगों को ओल्ड हाउस खुल गए। मैं तो इंशाल्लाह मर जाऊंगा उस वक्त तक, लेकिन ये कि तुम में जो यंग है उन लोगों का हो सकता है अंजाम ये हो कि वो आप में जब 80 साल के हो तुम लोग, तो तुम लोगों को तुम्हारी औलाद ओल्ड हाउस में फेंका, क्योंकि उस वक्त तक तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान सिविलाइज्ड हो ही जाएगा, सिविल सोसाइटी में तब्दील हो ही जाएगा। फर्ज करें मैंने अभी से ये फैसला किया कि मैं अपने बाप को ओल्ड हाउस में फेंकाऊँ, अपने बाप को फेंकाऊँ, तो उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद मेरी बीवी, मेरे बच्चे मुस्तकिल मेरी आज़ादी में मुदाखलत करेंगे, बीवी को भी डिवोर्स करूँ, हर वक्त चिक 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 रोज़ की किल किल, रोज़ के तानते चलो भाई छुट्टी चलो बहुत हो गई बर्दाश्त। जब मैं अपने बाप को छोड़ सकता हूँ तो बीवी को क्यों नहीं छोड़ूंगा भाई? अगर मैं बाप को छोड़ के आ सकता हूँ ओल्ड हाउस, तो बीवी को भी तो निकाल सकता हूँ घर से, तो मुझे एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारनी है। बच्चों को फिलवक्त मैंने बहुत छोटे ओल्ड हाउस में भेजने के नहीं सकता, बोर्डिंग हाउस में भेज दिया उनको, पैसे बहुत हैं बोर्डिंग हाउस में भेज दिया और फिर आराम से सबको ठिकाने लगा के बैठ गया। तो अब अगर मुझे कोई मसला हो गया तो मुझे कौन बचाने आएगा? खानदान नफरत करेगा ना मेरे से, खानदान कहेगा तो बड़ा बदमाश आदमी, अपने बाप को इसने छोड़ दिया तो इसको सब मेरे से ताल्लुकात छोड़ देंगे ना भाई। मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बचाने कौन आएगा? मेरा खानदान तो नहीं आएगा ना, मेरा खानदान तो मुझसे नफरत करेगा कि ये एक ऐसा बदमाश है कि जो अपने बूढ़े बाप को ओल्ड हाउस में फेंक के आ गया, अपनी बीवी को इसने घर से निकाल दिया, अपने बच्चों को इसने बाहर फेंक दिया, तो इसके साथ किस किस्म का ताल्लुक रहेगा? कोई मेरे से ताल्लुक नहीं रखेगा। तो अब मेरी जो माशरती जिंदगी है वो मैं कैसे गुजारूंगा, क्या करूंगा, मैं किसके पास जाऊंगा, किससे मिलूंगा? उसका इंतजाम करती है भाई सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी ये कहती है कि अब तुम रह गए हो अकेले, तो अब तुम्हारे लिए एक नई इज्तिमाइयत पैदा की जानी चाहिए, आजाद इंसानों के लिए आजाद इज्तिमाइयतें पैदा होती हैं। और उस वक्त मेरी आइडेंटिटी क्या होती है? मेरी आइडेंटिटी मेरा कबीला नहीं है, मेरी आइडेंटिटी मेरा मजहब नहीं है, मेरी आइडेंटिटी मेरी पैट्रियार्की नहीं है, मेरी आइडेंटिटी मेरे रिवायात नहीं है, तो फिर मेरी आइडेंटिटी क्या हो? तो मैं कहता हूं मेरी आइडेंटिटी है भाई मेरा प्रोफेशन, कौन हूं मैं? तो मैं कहूंगा मैं हूं भाई यूनिवर्सिटी टीचर। तो जैसे ही मैं बनूंगा यूनिवर्सिटी टीचर तो मुझे मिल जाएगी मेंबरशिप एक माशरती इकाई, यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का मेंबर बन जाऊंगा। अब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन जो होगी ये एक एसोसिएशन है जो मेरे मफादात का तहफ़ करेगी, लेकिन यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन मेरे मफादात का ऐसे ही तहफ़ नहीं करेगी भाई। यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चूंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं और बाद में मैं बदमाश हुआ था, मैं बाप को भी निकाल दिया, बीवी को भी निकाल दिया, बच्चों को भी निकाल दिया, यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन मुझसे कभी ये नहीं पूछेगी कि अबे अपने बाप के साथ क्या कर रहा भाई, अपनी बीवी बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? वो कहेंगे नहीं आप कौन हो, आप एक टीचर हो, बस यही होगा। लिहाजा मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूशन को इससे कोई लेना देना नहीं, मैं अपने बाप के साथ क्या कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी। फर्ज किया मेरा बाप जो है वहां से ओल्ड हाउस से खत लिखे यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को कि ये जो तुम्हारा मेंबर है इस बदमाश ने मुझे यहाँ ओल्ड हाउस में फेंक के आया, कहने लगा कि अब्बा आए वहाँ पे एडी होम्स चलते हैं गरीब लोगों की मदद करने, और आपके हाथ से जो है ना मैं वो दिलवाऊंगा बूढ़े लोगों को तोहफे देने दे, और तोहफे देते देते दरवाज़ा बंद करके भाग गया। और बाहर जाते जाते ये भी कह गया कि भाई मेरे अब्बा जो है ना जहन में खलल है, इतना बदमाश है ये। तो यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन पढ़ के उसको बड़ा अफसोस होगा कि यार ये इतना बदमाश आदमी है, लेकिन वो कहेगा भाई मैं क्या कर सकता हूँ उसका, वो कहेंगे ये हमारे मेंबर हैं, हम इनका कुछ नहीं कर सकते, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट ये है कि वहाब सूरी जो भी बदमाशी करेगा ना उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि वहाब सूरी यूनिवर्सिटी में अगर वहाब सूरी को कोई प्रॉब्लम हुई तो वहाब सूरी की हम मदद करेंगे, और यूनिवर्सिटी के टीचर को कोई प्रॉब्लम हुआ तो वहाब सूरी उसकी मदद करता है या नहीं। तो यूनिवर्सिटी में अगर किसी बूढ़े टीचर के साथ नॉन टीचिंग स्टाफ ने बदतमीजी की, धक्का दे दिया, और यूनिवर्सिटी ने हंगामी के साथ बुलाया गया, इस बूढ़े बुजुर्ग टीचर को धक्का क्यों दिया गया, इसके लिए हम लोग हाथों पे सियाह पट्टी बांधेंगे, और वहाब सूरी ने कहा कि भाई मैं भी सियाह पट्टी बल्कि मैं पूरे ही कपड़े काले पहन के आ जाऊंगा, घर में कौन है मेरे, काले कपड़े पहन के आ जाऊँ, पूरे काले कपड़े पहन के आ गया और खूब एहतजाज किया, अपने बाप को मैंने वहाँ फेंका हुआ है लेकिन मैं एहतजाज कर रहा हूँ कि बुजुर्ग के साथ यूनिवर्सिटी के टीचर के साथ ऐसा कैसे हुआ। तो वो कहेंगे अच्छा आदमी है, ठीक आदमी है, तो मेरी फोकस होगा मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। लेकिन जैसे ही मैं तरक्की करके थोड़ा और ऊपर आया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना, तो कहेंगे भाई आप ऑफिसर्स एसोसिएशन के मेंबर हैं, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन गया। तो ऑफिसर एसोसिएशन का मेंबर अगर मैं बन जाऊंगा तो टीचर एसोसिएशन के मफादात को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, क्यों, क्योंकि अब मेरी मेरी मेरे इंटरेस्ट कुछ और हो गए, कल को मेरे इंटरेस्ट कुछ और हो जाएंगे, परसों मेरे इंटरेस्ट कुछ और हो जाएंगे, तो मैं अपने प्रोफेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पर फैसला करूंगा। तो मुझे सिर्फ यूनिवर्सिटी में तो मैं नहीं रहता ना भाई, घर से बाहर निकलूंगा तो फिर मैं क्या करूं, घर से बाहर मैं निकलूंगा तो मैं क्लब्स का मेंबर बनूंगा, इस स्नोकर क्लब का मेंबर, गोल्फ क्लब का मेंबर, फिशिंग क्लब का मेंबर, हाँ, और ये क्या किसी खैराती इदारे जाए उसमें मेरे अब्बा भी हैं तो उसका भी मैं मेंबर बन गया। तो जैसे जैसे मैं ऑर्गेनाइज करता चला जाऊंगा, इस तरह मुझ जैसे टीचर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, इस तरह बेशुमार ग्रुप्स डिवेलप हो जाएंगे, और इन तमाम ग्रुप्स के बीच में जो ताल्लुक की नौइयत होगी वो इनका जाती मफाद होगा, और जैसे ही मेरे मफाद पे जद पड़ेगी मैं उस इज्तिमाइयत को छोड़ दूंगा, किसी दूसरी इज्तिमाइयत का हिस्सा बन जाऊंगा। इस माशरे को हम कहते हैं सिविल सोसाइटी। जैसे यूनिवर्सिटी टीचर कभी मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि मैं अपने बाप के साथ क्या कह रहा हूँ, मेरे क्लब के मेंबर कभी मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैं कौन सा मजहब पे अमल करता हूँ, मेरे फिशिंग क्लब के मेंबर कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैंने अपनी बीवी के साथ क्या सलूक किया, वगैरह वगैरह वगैरह। सिर्फ एक काम मुझे करना है, कानून नहीं तोड़ना, अपने बाप को कानूनी तरीके से ओल्ड हाउस में पहुँचाना है, अपनी बीवी को कानूनी जरिए से कानूनी तरीके से घर से निकालना है, ये नहीं कि मैं अपनी बीवी का गला घोंट दूँ कि भाई हर वक्त खेल 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 चलो गला घोट देता उसको, ये मैं नहीं कर सकता, तरीके से सलीके से उसको घर से निकालना। फर्ज करें कि मैं इतना गंदा आदमी ना हूं, बाप को भी रखूं और बीवी को भी रखूं और बच्चों को भी रखूं, तब भी मैं सिविल सोसाइटी का मेंबर बन सकता हूं, सही है, उसके अंदर हमारी पूरी फैमिली उसमें शामिल हो जाएगी मुख्तलिफ इदारों के अंदर। तो इस किस्म की माशरत को हम सिविल माशरत कहते हैं। सिविल सोसाइटी के अंदर किसी की मेंबरशिप बनना और किसी मेंबरशिप से निकल जाने की बुनियादी जरूरत क्या होती है, आजादी में इजाफा, इसे कहते हैं भाई सिविल सोसाइटी। अब कुछ लोग माशाल्लाह कहते हैं, असल में सिविल सोसाइटी का ख़याम वजूद में आया था, मुसलमान लेके आए थे। मुसलमानों की सोसाइटी कभी सिविल सोसाइटी नहीं रही भाई। अब सिविल का तुमने ट्रांसलेशन अगर ये कर लिया महज़ब, और सोसाइटी का ट्रांसलेशन कर लिया माशरा, तो महज़ब माशरा सिविल माशरा होता है। तो तहजीब का ये इंटरप्रिटेशन मॉडर्न कंसेप्शन है। अब हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि सिविल सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें हर आदमी अपनी कानून की पाबंदी करता है। ये बात तो सही है कि कानून की पाबंदी करता है, तो कानून की पाबंदी तो मजहबी माशरे में भी की जा सकती है, कानून की पाबंदी तो पैट्रियार्किकल सोसाइटी में भी की जा सकती है, कबायली माशरे में भी की जा सकती है। लेकिन कानून की नौइयत कैसी होगी सिविल सोसाइटी में, उसकी बुनियाद आती है लीगल लिमिटेशन से। यानी कि आपके ऊपर जो कानूनी पाबंदियां लगती हैं, कानून का बुनियादी मकसद क्या होता है आपके ख्याल में, कानून क्यों बनाए जाते हैं? कानून का मतलब होता है तहफ्फुज़ फराहम करना। किस चीज को तहफ्फुज़ फराहम करना? इंसान को तहफ्फुज़ फराहम करना, उसके जिस्म को तहफ्फुज़ फराहम करना, उसकी अकदार को तहफ्फुज़ फराहम करना, या खैर को तहफ्फुज़ फराहम करना, है ना? इन सारी चीजों को सिविल सोसाइटी इंसानों के लिए एक ऐसी माशरत का तकाजा करती है कि आप एक ऐसी रियासत कायम करें जिसमें कानून का बुनियादी मकसद हो आजादी का तहफ्फुज। द पर्पस ऑफ स्टेट इज टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। लिबरल रियासत का कायम, जदीदियत ने एक ऐसी रियासत का कायम करने की कोशिश की जो आजादी के तहफ्फुज की दाई हो, आजादी के तहफ्फुज की दाई। तो आजादी के तहफ्फुज की एक शक्ल लिबरलिज्म भी है, लेकिन लिबरलिज्म वाहिद शक्ल नहीं है भाई। आजादी में इजाफे की कई अशकाल मगरब में मॉडर्निज्म के जरिए पैदा हुई। मसलन कई तरह की रियासतें होती हैं, एक रियासत है लिबरल रियासत, एक रियासत है नेशनलिस्ट रियासत, एक रियासत है फैशिस्ट रियासत, एक रियासत है इश्तराकी रियासत, एक रियासत है टोटलिटेरियन रियासत, कई तरह की रियासतें। हर रियासत ये कहती है कि हम ज्यादा आजादी फराहम करेंगे। हम सिर्फ लिबरल रियासत के ऊपर गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं कि मगरबी अफकार के अंदर ये तय किया गया या इस्टेब्लिश हुआ कि सबसे कामयाब रियासत जो सबसे ज़्यादा आज़ादी के इम्कानात पैदा करती है मगरबी तारीख के अंदर, वो लिबरल रियासत है। लिबरल रियासत के बारे में आम तौर पे मगरबी मुफक्किरीन का ये ख्याल है कि वो आज़ादी में लामतनाही इजाफे के इम्कानात पैदा करती है। सोशलिस्ट जो है या फाशिस्ट जो है या नेशनलिस्ट जो है, वो उन पर भी हम बहस करते हैं, लेकिन हम मौजू से हट जाएंगे। मैं सिर्फ आप फोकस मुझे इसके ऊपर करना है, लेकिन इन चीज़ों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आप एक जदीद तालीमी निज़ाम कायम करें, तो वो जदीद तालीमी निज़ाम जो होगा उसकी सिर्फ ये खसूसियत नहीं होगी कि वो साइंसी होगा, उसकी एक माशरती खसूसियत ये होगी कि वो आज़ादी में लामतनाही इजाफे को अपना बुनियादी माशरती हदफ करार देता होगा। और वो एक ऐसी रियासत का ख्वाहां भी होगा जो एक ऐसी रियासत हो जो इंसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी के इम्कानात पैदा करे। और कानून का बनाया क्यों जाए? कानून बनाया ही इसलिए जाए कि उसके नतीजे में ज्यादा से ज्यादा आजादी में इजाफा होता चला जाए। तो आज जो हमारे दुनिया में जो तालीमी निज़ाम राइजुल वक्त है, वो उसके अंदर ये तीनों एलिमेंट जो हैं, एक ऐसा निज़ाम तालीम जो प्री डोमिनेंटली साइंटिफिक हो, एक ऐसा तालीमी निज़ाम जो प्री डोमिनेंटली फ्रीडम ड्रिवन हो, एक ऐसा तालीमी निज़ाम जो एक ऐसी रियासत के खदोखाल वाज़े करता चला जाए जिसमें इंसानों की आज़ादी में इजाफे के लिए ही कवानीन बनाए जाएं, और वो तमाम कवानीन जो इंसानों की आज़ादी में कमी करते हैं या कमी का बायस होते हैं, उन कवानीन को बतदरीज कम किया जाए, कमज़ोर किया जाए, रिपील किया जाए, या आइडियल कंडीशंस में हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी तालीमी निज़ाम जो होता है वो महज इल्म फराम नहीं करता, बल्कि वो तालीमी निज़ाम एक मखसूस निज़ाम ज़िंदगी पर आपका ईमान मजबूत करने का भी ज़रिया बनता है। यानी कि इल्म और तालीम में एक बुनियादी फ़र्क है। इल्म एक बहुत बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा, बहुत वसी दायरा है, लेकिन हर इल्म को इंसानों, दूसरे इंसानों को मुंतकिल करना रियासती और माशरती अमल की जिम्मेदारी नहीं होता। वो इल्म रियासती और माशरती अमल के जरिए दूसरे इंसानों में मुंतकिल किया जाता है, जिस इल्म के बगैर माशरती और रियासती निज़ाम चल नहीं सकता। और वो उलूम जिनके होने या ना होने से माशरती और रियासती अमल को कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुंचता, उनको मुंतकिल करना इंसानों के लिए ज़रूरी नहीं होता। बात समझ आ रही है? मसलन आप में से कोई ऐसे बंदे को जानता है जो मेडिसिन पढ़ा हो? मेडिसिन डॉक्टर पढ़ जानते हैं आप खुद हैं या हैं? दोस्त है? अच्छा, उनको दे दें। हाँ, आप बताएं, दोस्त है आपका? अच्छा, तो मेडिसिन में जब वो पढ़ने गया था तो उसको किस चीज़ की तालीम दी गई? ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी। आप अपने दोस्त से, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके दोस्त को क्या रूहानियत पढ़ाई गई मेडिसिन कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर? स्पिरिचुअलिटी क्यों नहीं पढ़ाई गई? क्यों नहीं है उनका सिलेबस का हिस्सा? इंसानों की रूह होती है या नहीं है? किसी भाई का ये ख्याल कि रूह होती ही नहीं, कोई है ऐसा? आप में से कोई ऐसा है जिसका ये ख्याल हो कि रूह होती ही नहीं सिरे से? है भाई, सब लोग क्या समझते हैं रूह होती है? आप सबकी रूहें हैं, तो आप सबकी रूहें हैं, लेकिन फिजिशियन जो आपके वजूद को बरकरार रखने का जिम्मेदार है, वो यही कोशिश करेगा ना कि आपकी रूह आपके जिस्म के अंदर रहे, यही कोशिश करता है ना डॉक्टर? लेकिन वो तो रूह के बारे में कुछ पढ़ता ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ता वो? आप कह रहे हैं कि आपके अंदर रूह है और आपकी ज़िंदगी का इन्हेसार आपकी रूह पे, डॉक्टर आपको ज़िंदा रखने की कोशिश करता है, मदद करता है। तो आपको ज़िंदा रखने की जो आदमी कोशिश करेगा, आपके रूह को किसी ना किसी तरह ठूसता रहे आपके जिस्म के अंदर, तो उसको रूह के बारे में तो पढ़ना चाहिए ना भाई, रैशनल बात है ना ये या इरेशनल बात है? आप में से कोई इस पे गुफ्तगू करना चाहता है? हैं? तो दे दो माइक दे दो भाई, बस पीछे दे दो, तुम पीछे दे दो। जिस्मानी रूह, वजूद, वजूद, हाँ ठीक है जी। सही नहीं, अगर मैं जिस्मानी वजूद जो हो मेरा उसको नुकसान पहुंच जाए, यानी कि मैं बड़ी अच्छी इबादत वगैरह कर रहा हूं और मुझे कोई सांप काट ले, तो रूहानी वजूद के मुताबिक मैं बिल्कुल सही काम कर रहा था, जिस्मानी वजूद के मुताबिक मेरे मुझे सांप ने काट लिया, तो मेरा रूहानी वजूद मेरे जिस्मानी वजूद को बचा लेगा या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मेरे ये सवाल का जवाब है नहीं। क्यों क्यों नहीं बचाएगा भाई, क्यों नहीं बचाएगा? आपके ख्याल में क्यों नहीं बचाएगा? आपको पता है अहमद बिन हम्बल जो थे वो एक बार पढ़ा रहे थे, तो जब वो पढ़ाते थे हदीस, तो जिस किस्म की हदीस पढ़ा रहे होते थे उनका चेहरे का तगैयुर वैसा हो जाता था। अगर कोई सख्त हदीस है जिसमें अल्लाह से डराया गया तो रो भी पड़ते थे, कोई खुशी की बात होती तो खुश हो जाते थे। तो एक दिन जो है वो पढ़ाते रहे और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, रोने लगे, लेकिन वो पढ़ाते रहे। जब पूरी हदीस का वो ख़त्म हो गया सेशन, तो फिर अपने शागिर्द से उन्होंने कहा कि भाई ये ज़रा मेरा कुर्ता उठा के देखो, कोई चीज़ मुझे काट रही है। तो उन्होंने जब कुर्ता उठाया पीछे, तो बिच्छू था जिसने 35 जगह पे उनको डंक मारा था, 35 जगह पर। तो उन्होंने बिच्छू को मार दिया और उन्होंने कहा आपने जो है वो बताया नहीं। तो उन्होंने कहा भाई मसला ये है कि मैं हदीस पढ़ा रहा था तुम्हें, तो मैं हदीस का एहतराम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं ये जो है देखता, इस पे तवज्जो देता। सही है ना? तो ये उन्होंने फैसला किया, लेकिन उनको बिच्छू का जहर तो उनके जिस्म में दाखिल हो गया ना, है? तो डॉक्टर भाई ये कहता है कि रूह के साथ कुछ भी होता रहे, जिस्म के साथ कुछ होगा तो मैं देख लूंगा, लेकिन ये ऐसे ही नहीं कहता। फिजिकल साइंसेज ये कहती है कि मैन इज जस्ट ए साइकोकेमिकल ऑर्गेनिज्म, दैट्स इट, देयर इज नो स्पिरिट। आपका जो दोस्त है उसको मेडिसिन में स्पिरिट इसलिए नहीं पढ़ाई गई क्योंकि साइंटिफिकली उसको अंडरस्टैंड किया ही नहीं जा सकता। चूंकि उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, लिहाजा उसके होने या ना होने से मुताल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं की जाती, ना उसको ठीक कर किया जा सकता है, ना उसको खराब किया जा सकता है, ना उसको समझा जा सकता है, ना उसको समझाया जा सकता है। तो उसके उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। तो जब एक ऐसा दायरा जिसे आप सब कह रहे हो कि भाई हम सब के अंदर रूह तो है, लेकिन अगर रूह आपके जिस्म से निकल जाए तो आपका जिस्म तो काम नहीं करेगा ना भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकली जो आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको जानने का जो इल्म होगा वो फिजिकल साइंसेस से तो आ जाएगा, लेकिन स्पिरिट को अंडरस्टैंड करने का की सलाहियत नहीं है साइंस के अंदर। तो साइंस के अंदर जब सलाहियत नहीं होती तो उससे क्या ये इंप्लाई होता है कि आपसे ये कहा जाए कि स्पिरिट के लिए कुछ और करो। तो उसूलन यही होना चाहिए ना कि डॉक्टर बनते हुए स्पिरिचुअलिटी के लिए अलग तालीम दी जानी चाहिए, होना चाहिए ना भाई, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? कौन तहकीक कर रहा है रूह पे? कहां पर? साइकोलॉजी रूह के ऊपर काम नहीं करती भाई, ये आपका ख्याल ठीक नहीं है। साइंस तो कॉन्शियसनेस पे काम करती है। एम्पेरिकल साइकोलॉजी, मैं साइकोलॉजी का शागिर्द रहा हूँ, साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ एम्पेरिकल साइकोलॉजी होती है वो। एम्पेरिकल साइकोलॉजी है जो कॉन्शियसनेस के ऊपर बात करती है। कॉन्शियसनेस स्पिरिट नहीं होती, रूह नहीं होती वो। कॉन्शियसनेस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ योर एम्पेरिकल एग्जिस्टेंस, जो आपका मादी वजूद होता है उसकी नॉन फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, लेकिन वो रूह वो नहीं है भाई। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि क्या डॉक्टर का जो इल्म होता है उसे इल्म माना जाता है या नहीं? हाँ भाई, इल्म माना जाता है, लेकिन वो आपके आधे वजूद के बारे में बात कर रहा है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि एक मादी वजूद होता है और एक रूहानी वजूद होता है, लेकिन मादी वजूद के ऊपर जब एक आदमी डिग्री हासिल कर लेता है तो उसको इंसान पूरा का पूरा उसके हवाले किया जाता है या सिर्फ मादी इंसान उसके हवाले किया जाता है? है भाई पूरा, या कहते नहीं रूह अपने घर छोड़ के आप? तो उसकी रूहानी वजूद के बारे में तो वो बात नहीं करता। तो क्या कभी किसी पढ़े लिखे आदमी ने ये कहा है कि पाकिस्तान में डॉक्टर इतनी बदमाशी कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, उनकी खाल खींच रहे हैं, खाल खींच में उसका भूस भर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, इलाज करने जाता है आदमी कंगाल करके उसको रोड के ऊपर लाके फेंक देते हैं, लैंड क्रूजर खरीदते हैं, अपने बच्चों को स्विट्जरलैंड छुट्टियों पर लेके जाते हैं, इंसान के बच्चे कौन है ये? इतनी बदमाशी कैसे कर सकता है एक आदमी, जिसके पास एक आदमी बीमार आया और कह रहा है कि मैं तुझे ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी दवा खाए जब तक मुझे 500 रुपए नहीं मिलेंगे? किस किस्म की रूहानियत है ये? किस किस्म का इंसान है ये? किस किस्म का दिमाग है इसका? कैसा तालीम है भाई ये? कैसी एजुकेशन है ये? और आपको किसने ये बताया कि आप कहें कि हाँ भाई पैसे लेना तो ठीक बात है, पैसे लेना हो ठीक बात है, ये तो उसका प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन है उसका। आपको एक आदमी आपके पास आया है और तकलीफ से मरा जा रहा है और आप कहें अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, भाग जाओ इधर से। सारे डॉक्टर ऐसा नहीं करते, अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, मुफ्त इलाज भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो जिंदा कैसे रहेगा? तो आपके ख्याल में क्या ये मुमकिन है कि एक आदमी इंसानों के तकालीफ दूर करने की कोशिश करे और उसका माशरा उसे भूखा मार दे? क्या ये मुमकिन है? तो डॉक्टर इतने संदिल क्यों है भाई? क्योंकि उनकी कोई रूहानी तरबियत नहीं होती। तो आपने कभी ये कहा किसी सिविल सोसाइटी के किसी आदमी ने कहा कि डॉक्टरों की रूहानी तरबियत के लिए डॉक्टरों को डिग्री नहीं मिलेगी उस वक्त तक जब तक एक साल के लिए किसी पीर के पास किसी खानकाह में ये वक्त ना लगाएं ताकि इसकी रूहानी तरबियत हो जाए कि इंसान का बच्चा बने, जब इसके हाथ में कोई मरीज आए तो वो उससे मोहब्बत करे। आप तो उसको कहते हो नहीं हाउस जॉब करो, फिर FRCS करो, फिर अमेरिका चले जाओ, 25 लाख 28 लाख 30 लाख 35 लाख रुपए खर्च करो और फिर आगे लोगों का भूस भर दो। एक आदमी कानून पढ़ता है तो कानून का इतलाक किसके ऊपर होता है भाई? इंसानों पे होता है या जानवरों पे होता है कानून का इतलाक? कौन से इंसानों के ऊपर कानून का इतलाक होता है और कौन से इंसानों पे कानून का इतलाक नहीं होता है? नहीं, माशरे में रहने वाले तमाम इंसानों पे कानून का इतलाक होता है या कुछ ऐसे हैं जिन पे नहीं होता? पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में जो रूलिंग इलीट होती है उस पर अप्लाई नहीं होता कानून, उनकी बात नहीं कर रहा। जो पागल हजरात होते हैं ना भाई, उन पे भी नहीं होता। कानून जो होता है नॉर्मल इंसानों के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। अब आपने कहा कि भाई कानून चूंकि बहुत ही गुंजलत होता है, हर आदमी को पता नहीं होता, लिहाजा कानून दान होने चाहिए। जिस तरह पान दान होता है, उगाल दान होता है, उस तरह कानून दान होता है जिसमें कानून डाला जाता है, उसमें से कानून ही निकलता है। तो जो कानून दान होता है उसके पास आप चले जाते हैं कि भाई मेरे साथ ये मसला हो गया है, मुझ पर कानून का इतलाक होने वाला है, मुझे आप बचाएं। तो कानून दान इंसान को बचाते हैं ना, तो इंसान का एक रूहानी वजूद भी है, एक मादी वजूद भी है, तो किसको बचाता है वो असल में? या आधा इंसान को बचाता है? कानून का इतलाक जिस्म पे होगा ना भाई, एक आदमी मर गया तो उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा? तो जिस्म पे होगा ना कानून का, सजा भी जिस्म को मिलेगी ना, रूह पे मिलती है सजा। तो आपने कहा भाई एक आदमी कानून सीखता है तो चूंकि वो इंसान से डील कर रहा है और इंसान कानून का बंदा तो है, लेकिन इंसान की रूह भी कानून के ताबे होनी चाहिए, जिस्म नहीं रूह भी। तो वकीलों को क्या बढ़ाया जाता है रूहानियत? जितने जो जस्टिस बैठे हुए हैं और लॉयर्स हैं, इन्होंने जिंदगी में, पूरी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी पे कुछ पढ़ा होता है या नहीं है भाई? इंसाफ पे क्यों नहीं शामिल होता आपको पता है क्यों नहीं होता? एक वेस्टर्न फलसफी था, उसका नाम था जॉन लॉक। लॉक कहता है मैजिस्ट्रेट ओनली डील्स विद स्टेट, ESTAT, प्रॉपर्टी से डील करता है लॉ मैजिस्ट्रेट, एंड फेथ कैन नॉट बी इनहेरिटेड। ईमान जो होता है ना, इनहेरिटेंस का मामला नहीं है, इनहेरिटेंस का मामला है प्रॉपर्टी। तो कानून देखता है प्रॉपर्टी को, तो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी आपको मिलती है? What actually you own? What is your property? हाँ, हमारी body, exactly, तुम्हारा जिस्म, you own your body. तो पहली property तुम्हारे पास क्या है? जिस्म। तो जिस्म पे apply होगा। अब जिस्म के अंदर रूह भी तो बैठी हुई है, उसके ऊपर क्यों नहीं तवज्जो देते? अब आप कहते हैं नहीं, आप वकील बन गए, अब आपका काम यह है कि आप कानून का तहफ़ करेंगे। तो जैसे ही कोई आदमी मुश्किल में पड़ता है वकील के पास जाता है, वकील कहता है इतने पैसे दे दो, बेल सूट फाइल करूंगा तुम्हारी 75 लाख रुपए में। हैं, अभी थोड़े दिन पहले पिछली गवर्नमेंट के अंदर एक आदमी ने जज की शान में कोई गुस्ताखी की तो उसकी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस उस पर फाइल हुआ, तो उस की बेल सूट फाइल की एक दूसरे वकील ने 75 लाख रुपए में, 75 लाख रुपए। आपको पता है वकील जो होते हैं एक कोट पहनते हैं, वो जो कोट पहनते हैं, जो अगर रिवायती कोट हो قدیم زمانوں میں جو کوٹ بنتے تھے اس میں جو کوٹ ہوتا تھا اس کے یہ جو کالر ہوتا ہے پیچھے بیک, اس کے اوپر ایک پاکٹ لگا ہوا ہوتا ہے جیب. یہ اس وقت سے یہ روایت چلی آ رہی ہے جب رومنز جو ہوتے تھے لائر جا کے جورسٹ کنگ کے سامنے کسی کا کیس ڈیفینڈ کرتے تھے. جیب پیچھے کیوں ہوتا تھا؟ جیب پیچھے اس لیے ہوتا تھا بھائی کہ جب اس کے پاس کوئی چلا جاتا تھا نا تو وہ کہتا تھا کہ قانون میں جانتا ہوں, یہ میرا فرض ہے کہ میں ڈیفینڈ کروں گا. اگر اسے پتا ہوتا تھا یہ آدمی سچا ہے تو وہ جا کر کیس ڈیفینڈ کرتا تھا انکنڈیشنلی. کس کے سامنے؟ سیزر کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا تھا, کنگ کے سامنے. مذاق نہیں ہے, کنگ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا, ڈیفینڈ کرتا تھا. اور جیب پیچھے اس لیے ہوتا تھا کہ اگر تم مناسب سمجھو جو تمہاری حیثیت ہے وہ جیب میں ڈال دینا پیچھے سے, مجھے دیکھتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئے پیچھے سے ڈال کے چلے جانا, اور اگر خالی چھوڑ دیا تب بھی کیس ڈیفینڈ کروں گا. یہ رومن جورس کی ذہنی کیفیت تھی. سول معاشرے کا فرد نہیں تھا وہ. وہ کہتا تھا اٹس دا ڈیوٹی آف دا جورس ٹو پروٹیکٹ دی انوسنٹ. اف آئی ایم ناٹ پروٹیکٹنگ دی انوسنٹ واٹ از دا جسٹیفیکیشن آف دس لا؟ اس ملک کے اندر, صرف اس ملک کے اندر, پوری دنیا کے اندر ایک وکیل ایک آدمی کا کیس لڑتا ہے, جیت جاتا ہے, وہ کیس ایک دوسرے کی طرف سے لڑتا ہے پھر جیت جاتا ہے, حق میں بھی جیت جاتا ہے مخالفت میں بھی جیت جاتا ہے. کس قسم کی اسپرچل حیثیت ہے ایسی؟ کس قسم کا دماغ ہے اس کا؟ اس کو پیسے دے دو کچھ بھی کر دے گا وہ لا کے ساتھ, کچھ بھی. تو آپ کہیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح کرپٹ ہو گئی ہے, لہذا کوئی بھی وکیل وکیل نہیں بن سکتا جب تک وہ اسپرچل تربیت اس کی نہ ہو. لہذا تمام وکلا جو ہیں تقریباً 300 سال جو ہے, ہر وکیل 300 سال کے جس حد تک وہ کرپٹ ہے 300 سال جو ہے وہ لگائے گا کسی خانقاہ میں. ظاہر ہے 300 سال میں اس کا انتقال ہی ہو جائے گا. تو اگر کوئی 300 سال رہنے کے بعد اس قابل ہو گیا تو دین ہی ول ڈیفینڈ. لیٹ دا کرمنل ڈیفینڈ بائی دیم سیلفز. وائی کرمنلز آر بینگ ڈیفینڈیڈ بائی دا لائرز؟ وائی یو آر ڈیفینڈنگ دا کرمنلز؟ وائی؟ کیونکہ تم روحانی طور پہ کرپٹ ہو گئے. لیکن روحانی ترتیب کا تو کوئی انتظام آپ نے کیا ہی نہیں. یہ لائرز, ڈاکٹر, انجینئرز, ٹیچرز, آرکیٹیکٹ, آرٹسٹ, یہ سب جو علوم حاصل کر رہے ہیں, یہ سارے کے سارے علوم تو علوم مانے جاتے ہیں, لیکن جب عالم دین کوئی بن رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو کیمسٹری بھی پڑھاؤ, فزکس بھی پڑھاؤ, کمپیوٹر بھی پڑھاؤ. کیوں پڑھاؤ بھائی؟ تم نے کبھی یہ کیوں نہیں کہا ڈاکٹر کو جو ہے علم التفسیر پڑھاؤ؟ اس لیے نہیں کہا کہ تفسیر کو آپ علم نہیں سمجھتے. نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خانقاہ کے اندر جو ہوتا ہے اسے لوگ علم نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا لپو گیری ہوتی رہتی ہے وہاں پر, پتہ نہیں کیا ہو رہا, بیوقوف گیری ہو رہی ہے, تو اب بند کرو اس کو. لیکن ڈاکٹر کے پاس آپ سمجھتے ہیں علم حاصل کر رہا ہے, وہ علم ہو رہا ہے. تو جو صوفیہ کے پاس ہوتا ہے اسے لوگ علم نہیں مانتے بھائی, اسے علم نہیں سمجھا جاتا. اسے سمجھا جاتا ہے وقت کا ضیاع, چرس ورس پینے چلے جاتے ہیں لوگ, چرس پی کے وہیں پہ لیٹے ہوتے ہیں. ہاں ہم نے صوفیزم پہ ایک پیپر بنایا, واٹ آر دی کیریکٹرسٹکس آف صوفیس, فلسفے کا اسٹوڈنٹ اس نے پیپر میں لکھا جواب کہ صوفیہ کی جو درگاہیں ہوتی ہیں وہاں پہ چرس کی سگریٹیں بنائی جاتی ہیں, بھنگیں پی جاتی ہیں, اور جو ہے یہ کیا جاتا ہے اور وہ کیا جاتا. میں چکرا گیا پیپر پڑھ کے, چکر آ گیا مجھے کہ یہ آدمی کیا لکھ رہا ہے, اس کو کیا سمجھ رہا ہے یہ. اگر کسی خانقاہ میں ایسا ہو رہا ہے तो सूबिया ने थोड़ी किया है ये भाई, हमने जिस तरह डॉक्टरी को करप्ट किया है, जिस तरह हमने इंजीनियरिंग को करप्ट किया, वहां पे भी कुछ भाई पहुंच गए होंगे। तो सवाल ये है कि आपको उलमा को आप कहते हो कि साइंटिफिक नॉलेज हासिल करनी चाहिए, लेकिन साइंटिस्टों को आप ये नहीं कहते कि इल्मी रूहानी तालीम हासिल करनी चाहिए, कुरानी तालीम हासिल करनी चाहिए वगैरह वगैरह, क्यों ऐसा होता है? इंजीनियरिंग आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि दीनिया इस्लामियात पढ़ाई जाती है, उसको दो तीन आयतें वगैरह याद करा दी, सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जात का एक आधा पूरा हिस्सा है स्प्रेड, आपने खुद ही बताया था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप कहेंगे भाई इंसान की स्प्रेड नहीं होती, बात खत्म हो गई। लेकिन आपसे मैंने पूछा था, आपने कहा होती है स्प्रेड, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है, आपने यही कहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसके ऊपर तो आपने बहुत तवज्जो नहीं दी ना। आज समझ लो एक इस्लामियाती के, हमारे एक इस्लामियात के टीचर थे, बहुत मारते थे, बहुत सख्त मारते थे, और उनको गुस्सा इस बात पे आता था कि तुम लोग जो हो हर चीज़ को इतनी तवज्जो में पढ़ते हो, इस्लामियात को पढ़ते नहीं हो। तो सबसे बेकार सब्जेक्ट जिसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है वो इस्लामियात होता है भाई पाकिस्तान के अंदर। मैं यूनिवर्सिटी टीचिंग में हूँ और मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, और ये जो क्या कहते हैं बायो एथिक्स है ना, मेडिकल एथिक्स, 7 साल से मैं टॉप इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ा रहा हूँ डॉक्टरों को, 7 साल से, और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर हूँ। बड़े बड़े तुर्रम खां मैंने देखे डॉक्टर कितनी स्पिरिचुअल होते हैं, हवाओं खलाओं में मैं बात नहीं कर रहा। एक दीनियात पढ़ा के तुमने कह दिया गया तो वो तो मैथमेटिक्स उनको भी आती है, उनको मौलवी हजरात को भी कुछ ना कुछ आती है। प्रॉब्लम ये होता है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ के ऊपर आप तवज्जो देते हैं, और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती वो इल्म तो होता है लेकिन उसको तालीम नहीं समझा जाता। फॉर्मल एजुकेशन इज, फॉर्मल नॉलेज इज एजुकेशन, इनफॉर्मल नॉलेज इज नॉट एन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर वो चीज आती है जिसको दूसरों तक पहुंचाना जरूरी होता है, इंतहाई जरूरी, और जिस चीज को दूसरों तक पहुंचाना इंतहाई जरूरी नहीं होता उसको लोगों की सवाबदीद पे छोड़ा जाता है। यानी कि कोई पाकिस्तान का स्कूल है ऐसा जिसने जो साइंस ना पढ़ाता हो, है भाई? और ये भी मुझे बता दे कौन सा स्कूल है जो स्पिरिचुअलिटी पढ़ाता हो, है कोई स्कूल? क्यों नहीं पढ़ाता, कभी आपने सोचा नहीं है? आपकी रूह ने कभी आपको बताया नहीं कि आपकी रूह के साथ क्या हो रहा है यहां पर? आवाज नहीं आ रही भाई, देना जरा। पढ़ाए नहीं जाते, जरूरत नहीं है ना इस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, यही वजह, कोई जरूरत नहीं है उसकी। हर स्कूल के अंदर वो होता है स्पोर्ट टीचर, क्या कर रहा होता है वो, लेफ्ट राइट उठ जाओ बैठ जाओ खड़े हो जाओ सो जाओ लेट जाओ, पीछे घूम, दाने घूम, पीछे घूम, आगे घूम, करवा रहा होता है ना भाई ये है? क्यों करवा रहा होता है? ताकि आपके मसल्स बने. अ हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी. नहीं, उसके लिए कुरान की कोई हदीस वगैरह आयत या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आमतौर पर लिखी हुई होती है उनके टी शर्ट के ऊपर. हमारे जो थे स्पोर्ट्स टीचर, उनके उस पर लिखी हुई थी कि कभी मुसलमान कमज़ोर मुसलमानों से बेहतर है. तो उनकी उस जो खूब भागते रहते हो, खूब भागते रहते हो, कभी मुसलमान बनने की कोशिश कर रहे हो, कभी जिस्म रख कर कभी मुसलमान बनने की कोशिश. एक मिनट, बहुत ज़रूरी फ़ोन आ रहा है, मैं बात कर. हाँ मुगल, हाँ बेटे, खुद ही खुल रही है, खुद ही खुल. नहीं तो वो जो पिक्चर्स हैं वो कौन सी पिक्चर्स हैं? अच्छा, वो डेस्कटॉप पे कैसे आ गई बेटे? अच्छा, अच्छा तो आप जो है ना वो बराबर वाली जो बच्ची है ना, नहीं नहीं वो अपना काजी साहब की जो बच्ची है, मामा से कहो वो आके कर देगी. उसे कहना डेस्कटॉप को क्लीन कर दे. डेस्कटॉप के ऊपर जो तस्वीर आ गई है ना उनको डिलीट कर दे. नहीं 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 मसला ये है कि उनसे कहो कि उनको सेव कर दें लेकिन डेस्कटॉप के ऊपर से हटा दें. सेव कर दें लेकिन डेस्कटॉप से हटा दें. ठीक है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं. अगर स्लो गया फिर मैं आ जाऊंगा तो कर लेंगे. ठीक है, इंशाल्लाह कल आ जाऊँ. ओके, भाई मैं ये आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो हम कहते हैं ना तालीम दे दी जाए इंसान को, तो इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में हज़ारों तरह के उलूम मौजूद हैं लेकिन हम उन उलूम को सेलेक्ट करते हैं जो हमारे ख्याल में माशरे को चलाने, रियासत को चलाने और निज़ाम ज़िंदगी, जैसा हमारे निज़ाम ज़िंदगी, उसको चलाने के लिए ज़रूरी हों, इंतहाई ज़रूरी. बस उसकी तालीम, उसके बाद फिर जब बच्चा तालीम हासिल कर लेता है फिर उसको आज़ाद छोड़ दिया जाता है. जो वो पढ़ना चाहे, प्रिज्यूम ये किया जाता है कि जब तुम्हारी तालीम हासिल कर लोगे तो तुम्हारी मर्ज़ी है कि अपने मर्ज़ी से कोई दूसरा इल्म हासिल करना चाहो तो हासिल कर लो. जो जिस फील्ड में भी तुम जाना चाहो चले जाओ, लेकिन तालीमी निज़ाम का बुनियादी मकसद ये होगा ऐसे अफराद तैयार करना जो हाजिर और मौजूद निज़ाम ज़िंदगी को चलाने के काबिल हो. इसका मतलब ये हुआ कि हाजिर और मौजूद निज़ाम ज़िंदगी अगर मॉडर्न है तो हमें मॉडर्न ज़िंदगी गुजारने के लिए मॉडर्न एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी. और जब हम मॉडर्न एजुकेशन हासिल करेंगे और मॉडर्न निज़ाम और मेथडोलॉजीज इस्तेमाल करेंगे तो उसके नतीजे में जो वैल्यूज़ और अखलाकियात और इंसानियत पैदा होगी वो भी वैसे ही होगी जैसी कि मॉडर्न लिबरल स्टेट डेवलप हो, जिसके नतीजे में सिविल सोसाइटी डेवलप हो और जिसके नतीजे में टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन लाइफ फॉर्म पैदा हो. तो जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम है ये चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है भाई, हिंदुस्तान के अंदर भी हर चीज़ के अंदर यही प्रॉब्लम जो है, यही इशू जो है वो है. मसलन एग्जांपल मैं देता हूँ हिंदुस्तान की. इंडिया के अंदर आपको पता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ है, तकरीबन 1 अरब लोग, तो और गरीब भी बहुत लोग हैं, गुरबत भी बेइंतहा है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरीक़ा हाय इलाज इख्तियार करते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ा इलाज क्या है कि जो मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, या मॉडर्न मेडिकल साइंसेस, इसके भी बड़े अच्छे लोग वहाँ पर दुनिया भर में के मौजूद हैं इंडिया के अंदर, और इंडियन डॉक्टर पूरी दुनिया में मशहूर भी हैं। तो ये नहीं है कि उनके पास मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुओं के अंदर एक कास्ट होती है जिसे हम कहते हैं वेद्स, ठीक है। वेद जो हैं, इनकी बहुत सारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये होती है कि ये इलाज करते हैं, ठीक है। अब इनके पास जो इलाज के तरीके हैं, ये हजरत ईसा की पैदाइश से पहले से इनके पास कुछ नुस्खे हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं पत्तों से, जड़ी बूटियों से, वगैरह वगैरह, सही है। तो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन वो बनाते हैं उससे वो इलाज करते हैं, उसके इलाज से बहुत सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मर भी जाते होंगे। मसलन ये कि सांस के मर्ज का एक इलाज इंडिया के अंदर होता है, ये एक खानदान है जो कि महाराष्ट्र में हमेशा, यानी कि सदियों से उनके खानदान के पास उसका नुस्खा है, उस दवा का, दवा का, दवा खाने का एक तरीका है। दवा खाने का क्या तरीका है कि आपको अगर सांस की कोई बीमारी है, एस्थेमा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप एक मछली लेकर आएंगे, छोटी जिंदा मछली, जिंदा मछली लेकर आएंगे, उसके बाद वो जो जोगी है, जो कोई भी बंदा है, वो मछली का मुंह खोलेगा, मछली के अंदर, मछली के मुंह के अंदर वो दवा डालेगा, आटे के अंदर बनी हुई एक दवा होती है, वो भरता है मछली के मुंह में, और जिंदा मछली आपको निगलवा देता है, सही है। और जब वो जिंदा मछली वो निगल लेता है, तो उसके 3 दिन के बाद उसको ये प्रॉब्लम, सांस की बीमारी खत्म हो जाती है, कोई दवा उसको खाने की जरूरत नहीं, फॉर ऑल टाइम्स, पूरी जिंदगी उसको दवा खाने की जरूरत नहीं है। ये किन का दावा है? ये उन लोगों का दावा है जो ये इलाज करते हैं, ठीक है। अब ये इलाज वो कब से कर रहे हैं? सदियों से कर रहे हैं। इसका वो कोई पैसा नहीं लेते, एक पाई भी नहीं लेते। लाइन लगती है, नेशनल ज्योग्राफिक के अंदर आप डाल सकते हैं, आ जाएगी पूरी डॉक्यूमेंट्री है। लाइन लगती है, किसी भी मजहब के हो, कोई भी हो, आप लाइन लगेगी, मछली आप निकालोगे, वो डालेगा, निगल देगा, निगलवा देगा, उसके बाद आपसे कहा जाओ। उसमें हजारों लोग ठीक हुए हैं, लेकिन ये जो तरीका इलाज है, इसमें ये पता नहीं है कि वो दवा क्या बनाता है, मछली पेट में जाके क्या करती है, सांस की बीमारी कैसे ठीक हो जाती है, इसकी कोई साइंटिफिक फाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अब इस तरह के हजारों तरह के इलाज के तरीके वहां पर मौजूद हैं। लोग चूंकि बेचारे गरीब होते हैं, उनके पास खाने को खाना नहीं है, वो डॉक्टरों का इलाज कहाँ से करवाएं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं, वो जो कुछ भी इलाज करते हैं। जैसे मैं एक बार हिंदुस्तान गया, तो मैं नमाज पढ़ के जब बाहर निकला, तो वहां पर मस्जिद के साथ जो है बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेके खड़े होते हैं, सही है। और वो जो भी नमाजी उतर रहा होता है उसको वो देख रहा होता है, जिस पे उसका दिल ठुक जाए, हर एक से नहीं कहता, जिस पे उसका दिल ठुक जाए उसे कहता है बच्चे पे फूंक मार दो। हिंदू भी, हिंदू होते हैं ज्यादातर, जिस इलाके में हमारे रिश्तेदार है वहां हिंदू है ज्यादा, हिंदू होते हैं, तिलक वगैरह लगाई भी होती है, कहना बच्चे फूंक दो। तो मैं जब निकला, तो उसने, एक औरत ने कहा कि मेरे बच्चे पे फूंक दे, मैंने कहा मैं, बच्चा मर जाएगा, मैंने कहा इसी वक्त बच्चा मर जाएगा, शायद माँ भी मर जाए सदमे की वजह से। मैंने कहा भाई मैं कहाँ से फूंक दूँ। तो मेरे चचा ने कहा कि अब इसने तुमसे कहा है ना तुम्हें ही फूंकना है, यही इसका फेथ है, इसका बिलीव ये है, ही इज द मैन, ये फूकेगा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो भाई तुम अल्लाह से तौबा करते हुए फूक दो, थूक मत दो फूक दो। तो मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए फूक दिया, जो भी दुआएं वगैरह मुझे उस वक्त याद आई पढ़ के फूक दी, वो चली गई, मुतमईन चली गई। ये जो तरीक़े इलाज हैं, एक ऐसे मुल्क में जिसकी आबादी 1 अरब है, जहाँ पर 12 करोड़ इंसान ऐसे हैं जो एक वक्त का खाना खाते हैं, एक वक्त का, 12 करोड़ इंसान एक वक्त का खाना खाते हैं, वहाँ पर वो मेडिसिन की नॉलेज रखने के बावजूद अफोर्ड नहीं कर सकते कि डॉक्टरों के पास जाएं, तो वो इस तरह तरीक़े इलाज करते हैं। इसके नतीजे में वहाँ पर एक साइंटिफिक सोसाइटी है, इनको कहते हैं रेडिकल्स, रेडिकल्स भी कहते हैं और रैशनलिस्ट भी कहते हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मूवमेंट है, ठीक है, इसमें यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए डॉक्टर्स वगैरह मौजूद हैं। ये लोगों के पास जाते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि ये जो आदमी तुम्हारा इलाज कर रहा है ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। अगर कोई आदमी तुम्हें मछली खिला रहा है तो वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, ये जो आदमी तुम पे फूके मार रहा है ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, ये आदमी जो तुम्हें पत्ते खिला रहा है ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, ये असल में इसकी कोई, इससे कुछ होता ही नहीं है। तो एक बहुत मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, अमेरिकन है, वो इंडिया में रहा तकरीबन 8 साल, उसने ये तमाम जहाँ जहाँ पर अहम लोग काम करते हैं उनके साथ उसने काम किया, और उसने बाद में आकर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसने ये कहा कि भाई रेडिकल से और रैशनलिस्टों से उन्होंने ये कहा कि तुम साइंटिफिक बुनियादों पर उनका ईमान तो मुतजलजल कर देते हो लेकिन तुम उसकी जेब में पैसा तो डालते नहीं हो, तो उसका वो जो ईमान है वो भी तुम छीन लेते हो और इलाज के तरीके भी उसको नहीं देते। तो भाई ये वेद जो काम उनके लिए कर रहे हैं या पीर और मुरीद जो ये काम कर रहे हैं, करने दो उनको। तो साइंटिफिक नॉलेज एग्रेसिव होती है, वो ये कहती है कि दरअसल इल्म जो है वो साइंस के पास है और जो नॉन साइंटिफिक होता है वो दरअसल इल्म नहीं होता, गुमराही होती है। तो जहां जब साइंटिफिक डेवलपमेंट होती है कहीं पर, तो वो उलूम जो कि साइंटिफिक नहीं होते उनको उलूम ही की कैटेगरी से न सिर्फ बाहर निकाला जाता है बल्कि एक ऐसा सियासी सामाजिक निज़ाम पैदा किया जाता है जो उन उलूम की जड़ें काटते हैं जो नॉन साइंटिफिक होते हैं, समझे भाई। तो मौजूदा तालीमी निज़ाम जो है, जदीद तालीमी निज़ाम जो है, वो महज तालीम नहीं देता साइंस की बल्कि उन उलूम की भी नफी करना शुरू कर देता है जो साइंस के दायरा अमल या दायरा इख्तियार से बाहर होते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि एक ऐसी दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं जिसके बारे में हम ये कहते हैं इट विल बी ए साइंटिसाइज्ड वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जिसमें साइंस के अलावा दूसरा कोई इल्म बाकी नहीं रहेगा, जिसे दुनिया के जो बड़े फलसफी हैं, बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या बड़े फिलॉसफी ऑफ साइंस के लोग हैं पसंद नहीं करते, वो कहते हैं ये गलत बात है, ये मुमकिन है कि किसी मसले के हल का नॉन साइंटिफिक सोल्यूशन मौजूद हो लेकिन अगर आपने साइंस के अलावा नॉन साइंटिफिक उलूम को ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर साइंस कोलैप्स करेगी तो फिर आपके पास कोई हल नहीं होगा। अभी तो ये होता है ना कि जब डॉक्टर आपका इलाज कर करके थक जाता है तो वो कहता है भाई अब इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तो ये मुमकिन है कि एक ऐसा वक्त आए कि कोई दुआ करने वाला मौजूद ना हो, ये पॉसिबल है कि आपके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म मौजूद ना हो। आपके सामने है کہ حکیم جو تھے وہ ختم ہو گئے. آپ کے علاقے میں کوئی بڑا حکیم موجود ہے؟ ہیں یہاں پر ہے کوئی؟ آپ لوگوں کے پاس, آپ اگر بیمار ہو جائیں تو آپ کے پاس اگر یہ موقع ہو کہ آپ حکیم کے پاس جائیں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں تو کس کے پاس جانا مناسب سمجھیں گے آپ؟ ہے بھائی, کون ہے جو حکیم کے پاس جانا چاہے گا؟ کوئی بھی حکیم کے پاس نہیں جانا چاہے گا, اس لیے آپ جانا چاہیں گے. اچھا چلے, انہوں نے یعنی کہ تبرکن ایک بھائی نے اس کی نمائندگی کی کہ میں چلا جاتا ہوں بھائی, میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں, مجھے مار دے حکیم. ہے ٹھیک ہے, لیکن ابھی پرابلم یہ ہوا ہے کہ تم دیکھو گے کہ میڈیکل آپ بھی جا دیں. اچھا ٹھیک ہے, تو پرابلم یہ ہے کہ حکیم کے پاس اگر کوئی بندہ چلا جائے تو اس کے قریب قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ ناراضگی کا اظہار کر, وہ ان کا ایک عام دور کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, کیا دنیا میں سارے ڈاکٹر مر گئے ہیں؟ سنا ہے جملہ آپ لوگوں نے کبھی؟ ظاہر ہے آپ کبھی گئے نہیں, اگر آپ کبھی چلے جائیں تو اس کے بعد جو جملہ آپ کو سننے کو ملے گا اپنے خیر خواہوں کے ذریعے وہ یہ کہ کیا دنیا میں سارے ڈاکٹر مر گئے ہیں, یعنی کہ دنیا میں جب سارے ڈاکٹر مر جائیں تب حکیم کے پاس آپ کو جانا پڑے گا. آپ کو میں بتا دوں کہ حکیموں کی جو حیثیت تھی ہندوستان میں اس کی کیا حالت تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اگر آپ کو گرینگرین ہو جائے تو میڈیکل سائنسز میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. گرینگرین سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ گوشت سڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر گرینگرین ہو جائے کسی کو تو اس کا علاج یہ ہے کہ جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جاتا ہے. یہی طریقہ ہے میڈیکل سائنسز کے اندر. ترقی بہت کی ہے لیکن ابھی گرینگرین کا کوئی علاج موجود نہیں ہے. مسجد وزیر علی, آپ لوگوں کو پتا ہوگا پنجاب میں ایک مسجد ہے, مسجد وزیر علی. یہ وزیر علی جو تھا یہ ایک حکیم تھا. نور جہاں کو گرینگرین ہو گیا, نور جہاں جہانگیر کی جو بیوی تھی اس کو گرینگرین ہو گیا. گرینگرین جب ہو گیا اس کو تو لوگوں نے کہا کہ ابھی ابتدائی حیثیت پہ تھا, اوپر یعنی کہ اسکن کی اپر لیئر پر ہوا. اور گرینگرین جب ہوتا ہے تو اس سے زبردست قسم کی اسمیل پھیلتی ہے کیونکہ گوشت سڑ رہا ہوتا ہے. اب ملکہ ہندوستان اوپر سے نور جہاں, جو جہاں کو نور سے منور کرنے والی, اس کے پیر میں سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے, بادشاہ کو کتنا آگ لگی ہوگی. جہانگیر محبت بھی بہت کرتا تھا, اس کے شوہر کو قتل کر کے اس سے شادی کی تھی, کتنی کمٹمنٹ تھی. کیا کمٹمنٹ کا جب حالت یہ ہو تو اس نے ایک آدمی نے کہا کہ وزیر علی کے پاس علاج ہے. تو اس نے کہا وزیر علی کے پاس علاج تو ہے لیکن نور جہاں کو میں چاہتا ہوں کہ نور جہاں کو یہ دیکھے نہیں. تو اس نے کہا کہ وزیر علی کو بلایا تو وزیر علی نے کہا کہ ملکہ کو مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ زخم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس نے ایک خاص قسم کی ریت جو کہ گھڑی کے اندر ڈالی جاتی تھی, باریک ریت فرش پہ بچھوائی, اور اس نے کہا کہ ملکہ سے کہیں کہ ایک بار اس پہ چلیں. تو ملکہ جب چلی تو فوٹ اسٹیپس اس نے دیکھے, اور فوٹ اسٹیپ دیکھنے کے بعد اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے, میں سمجھ میں آ گیا کہ کیا مسئلہ ہے. اس کے بعد فوٹ اسٹیپس کو دوبارہ سے صاف کیا, اس کے بعد دوبارہ ریت بچھائی, اور اسے کہا ملکہ سے کہیں ایک بار اور چلے, اور اسی ریت کے اندر دوا لگا کر سوئیوں میں اس میں ڈال دی. تو ملکہ جب چلی تو سوئی پیر میں گھس گئی. تو چلتے ہوئے جب ملکہ نے پیر اٹھایا تو سوئی گھسی ہوئی تھی, تو اس نے پیر میں سے بس سوئی, اس نے کہا جب سوئی گھس جائے تو بس سوئی نکال لیجیے گا, دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ملکہ کا پیر ٹھیک ہو گیا, گرینگرین ختم ہو گیا. بادشاہ نے خوش ہونے کے بعد وزیر علی کو کہا تمہیں ہم لاہور دیتے ہیں, لاہور اس کو دے دیا وزیر علی کو. وزیر علی نے لاہور میں مسجد ڈیزائن کی خود, मस्जिद वजीर, ही वॉज आर्किटेक्ट, ही वॉज हकीम और एडमिनिस्ट्रेटर था। चारों दरवाजे जो हैं कि जहां से घुसते हैं आप, उनको ऑर्गेनाइज कर दिया इसने इस तरह कि आप एक पोजीशन के ऊपर बैठ के चारों दरवाजे देख सकते हैं। ये उसका स्टेट ऑफ माइंड था। हिंदुस्तान में कई ऐसी जगह हैं जहां पर बाज हकीमों ने ऐसे डिजाइन किए हैं दरगाहें, अभी भी हैं, जिसके अंदर अगर कोई आपका कागज का पुर्जा गिर जाए तो वो एक जगह पे पहुंच जाता है, कोई पंखा नहीं है उसके अंदर। ये हकीमों का स्टेट ऑफ माइंड था, इस सदा का दिमाग था। आज हकीम अपनी दवा नहीं बना सकता, तो वो सब लोग कहां चले गए? वो सब लोग मर गए और उनका इल्म उनके साथ मर गया। तो जैसे जैसे आप एक इल्म के ऊपर तवज्जो देना शुरू करते हैं तो उसके साथ दूसरे जो उलूम चल रहे होते हैं, जो तालीमी निजाम का हिस्सा नहीं बनते, वो महफूज नहीं रहते, खत्म हो जाते हैं। न सिर्फ वो उलूम खत्म हो जाते हैं बल्कि उन उलूम को जिन जबानों के अंदर बोला जाता है वो जबानें भी खत्म हो जाती हैं। 2024 तक दुनिया में 200 जबानें खत्म हो जाएंगी, 200 लैंग्वेजेस विल बी वैनिश्ड। उसको जबान को बोलने वाले लोग होंगे लेकिन जबान खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों ने जो तर्ज जिंदगी इख्तियार किया है उसका साथ वो जबान नहीं दे सकती। आप इल्म को रो रहे हैं, जबान खत्म हो रही है। तो जो हम आज जो मैंने चीजें आपको बताई हैं उसके अंदर मैंने आपको मॉडर्निज्म के बुनियादी तसव्वुरात बताए और ये बताया है कि जब साइंटिफिक मेथडोलॉजी डेवलप होती है तो वो गैर साइंटिफिक जो नॉलेज होती है उसको गैर इल्मी पेश करके इल्म के दायरे से बाहर निकालती चली जाती है। जब एक डॉक्टर के जरिए हाथों कोई आदमी मर जाता है और जब एक हकीम के हाथों एक आदमी मर जाता है तो दोनों की तरफ आपका रवैया एक नहीं होता। डॉक्टर के हाथों जब एक आदमी मरता है तो अगर फर्ज कर लेते हैं कि डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया तो इसे कहा जाता है डॉक्टर की गलती, डॉक्टर को सजा दो। लेकिन जब एक हकीम के जरिए एक आदमी मर जाता है तो आप कहते हैं हिकमत की गलती। समझ आई बात? क्यों? क्योंकि हिकमत को आप इल्म नहीं समझते। अब आप समझे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इल्म मर गया। अब वो दिन रात सवारा करें गेसू भी तो क्या, कहीं हालात सवरते हैं परेशान हो के। अब आप कितनी भी कंगी करें जो आपको अप्रिशिएट करने वाला है वो तो मर गया। समझे? गुजरा ना वक्त और मेरी उम्र ढल गई, इतनी मिली खुशी कि तमन्ना बदल गई। मैंने कहा कि हाथ मेरे साफ हो गए, उसने कहा कि हाथ से दुनिया निकल गई। समझे? तो जो कब किसके हाथ में कौन सी दुनिया निकली इसका ताल्लुक इस बात से होता है कि आपने जो तालीमी निजाम कायम किया है वो अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसे वो सर्व करता है। ये कोई साजिश वाजिश नहीं होती। सवाल ये है कि आपने जो तालीमी निजाम अपने लिए चूज किया है वो तालीमी निजाम जिस किस्म का इंसान बनाता है, जिस किस्म की रियासत बनाता है, जिस किस्म की माशरत बनाता है और जिस किस्म की मादियत पैदा करता है, उसी तरह की जिंदगी में आप रह सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरी दुनिया बनानी है तो उसके लिए दूसरा इल्म होना चाहिए भाई, लेकिन वो इल्म तो फना हो रहा है रोजाना। ये मैं नहीं कह रहा, कल जब मैं आपको तफसीली तौर पर साइंटिफिक मेथडोलॉजी पढ़ाऊंगा और फिर उसमें फेयर आर्बेंट को पढ़ाऊंगा तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि साइंस के जानने वाले साइंस के बारे में क्या राय रखते हैं। अभी हमारे पास कितना टाइम है? हाँ भाई फरमाए। यस मेटाफिजिक्स, यस यस ऑफ कोर्स। ये जो है एक बड़ा मशहूर आदमी है, उसका नाम है एमरल्ड हुजरल। हुजरल जो है एक जर्मन फलसफी था, उसने एक किताब लिखी थी द क्राइसिस ऑफ यूरोपियन साइंसेस 1906 में। ये किताब पब्लिश हुई 1926 में, यानी कि 20 साल बाद। क्राइसिस ऑफ यूरोपियन साइंसेस में 1906 के अंदर उसने ये बता दिया था कि जो नेचर है यूरोपियन साइंसेस की, वो एक क्राइसिस का शिकार है। और वो क्राइसिस ये है कि ये नेचुरलिस्ट है और ये पॉजिटिविस्ट है। तो वो कहता था द पॉजिटिविज्म एंड नेचुरलिज्म नॉट ओनली डीकैपिटेट्स फिलॉसफी बट इट विल ऑल्सो डीकैपिटेट साइंस। साइंस जिस रास्ते पे चल पड़ी है, हुजरल ये कहता था, इसके नतीजे में फलसफे की गर्दन नहीं कटेगी, साइंस की भी गर्दन कट जाएगी। सही है, तो वो तो हम कल इंशाल्लाह उसको देखेंगे। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जिंदा वही इल्म रहता है जो तालीम के दायरे में दाखिल हो जाता है। जो तालीम के दायरे में दाखिल नहीं होता, वो इल्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, लोगों का उसके ऊपर से भरोसा उठना शुरू हो जाता है, और लोग उस इल्म रखने वाले का मजाक उड़ाते हैं, तौहीन करते हैं, तजलील करते हैं, और वो इल्म जो है वो दूसरी जनरेशन को मुंतकिल नहीं होता। एक वक्त आता है वो इल्म ख़त्म हो जाता है, और वो इल्म जिंदा रहता है जिसे आप लायक एतबार समझते हैं, वो दूसरी जनरेशन को मुंतकिल होता रहता है, और उसके नतीजे में यकसानियत पैदा हो जाती है। दुनिया में कभी भी उलूम के ऊपर किसी एक इल्म की इजारादारी नहीं रही, मुख्तलिफ उलूम चलते रहते हैं। लेकिन आज जो दौर है उसके अंदर जो निज़ाम तालीम है उसके ऊपर साइंस की ऐसी इजारादारी कायम हुई है कि गैर साइंसी उलूम इल्म के दायरे से ही निकाल कर बाहर फेंक दिए गए, और उनकी इतनी तौहीन हुई कि उनको इल्म माना ही नहीं जाता। कराची यूनिवर्सिटी में एक इदारा बनाया गया विजुअल स्टडीज। वो इदारा जब बना तो उसके अंदर इस्लामिक आर्ट का भी एक डिपार्टमेंट खोलने की कोशिश की गई। तो उसके अंदर जो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, वो बड़ा नेक और बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। वो पूरे पाकिस्तान के अंदर घूमा फिरा था और बहुत सारे ऐसे उलूम जो कि कदीम इस्लामी उलूम थे, कत्ताती के हवाले से, सिरेमिक्स के हवाले से, कोई पंजाब में बैठा हुआ था, कोई इंटीरियर सिंध में बैठा हुआ था, बड़े बड़े सिलसिले थे, उन लोगों ने वो इल्म अपने अंदर महफूज रखा हुआ था। उन्होंने ये कहा कि भाई इन लोगों को हम यूनिवर्सिटी में लेके आएंगे और ये तालीम देंगे। अब जब उनका पे स्केल वगैरह डिटरमिन हुआ तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की शर्त ये थी कि आप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकते अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री ना हो। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल है ये। तो उसके अंदर बाज जो उस्ताद थे उन उलूम के, उन्होंने तो स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आलिम नहीं थे। तो उन्होंने कहा भाई इनको आप लेके आएंगे तो ये डिग्री कैसे अवॉर्ड कर सकते हैं जब इनके पास कोई डिग्री ही नहीं है। उस टीचर ने उनको ये समझाया, करता धरता जो लोग थे, कि देखें भाई इनके पास जो इल्म है उसके लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है, इनफॉर्मल नॉलेज है इनके पास, लेकिन अगर आपने इनको मौका नहीं दिया तो ये मर जाएंगे, इनका वक्त गुजर रहा है। इस पे कन्विंस करने में उस आदमी को बड़ा टाइम लग गया, और जब यूनिवर्सिटी कन्विंस हुई और इजाज़त दी तो उनमें से तीन जो उस्ताद थे उनका इंतकाल हो गया था, जो अपने एरिए के ये वो उलूम थे जो वो बुखारा से लेकर आए थे, और उस फैमिली का आखिरी आदमी था वो। और उसके जो शागिर्द हैं, अब उनको अपॉइंट कर लिया है लेकिन वो जो उस्ताद थे वो इनका इंतकाल हो गया। 7 साल लग गए यूनिवर्सिटी को यह समझाने में। तो इल्म तो उनके पास था, हमने उसे इल्म नहीं समझा। इस तरह दुनिया में हजारों उलूम है। जब आप कहते हैं ना हर उल्म को साइंस के पैमानों पर कसा और परखा जाए, तो वो साइंसी पैमानों पे कसे और परखे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी मावादु तबियात मुख्तलिफ है। वो इंसान को अलग तरीके से देखते हैं, कायनात को अलग तरीके से देखते हैं, हकीकत को अलग तरीके से समझते हैं। ये जो हिंदू फैमिली है, उनसे बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने करोड़ों रुपए की ऑफर की कि हमें इस दवा का फॉर्मूला बता दो। वो लंगोटी बांधते हैं, गरीब लोग हैं, एक पाई नहीं लेते। उन्होंने वो फॉर्मूला उनको नहीं बताया। उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो कि हम इस फॉर्मूले से तुम्हें धंधा करने दें? ये हमें बताया गया है, किसी को नहीं बताएंगे, सिर्फ हमारी नस्ल के अंदर रहेगा ये, लेकिन हम इसकी तिजारत नहीं होने देंगे। अब इस बात की कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो दवा पेट में मछली के जरिए क्यों जाए, लेकिन वो इस तरह करते हैं, नॉन साइंटिफिक है। फर्ज करें कि 100-150 आदमी मर जाए, तो इस तरीके इलाज पे पाबंदी लग जाएगी। हजारों लोग अस्पतालों में रोजाना मरते हैं, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि एक को आप इल्म समझते हो और दूसरे को आप इल्म नहीं समझते। तो ये याद रखें, जिंदगी में असल फैसला जो होता है ना, वो दो कानों के बीच में या फसलियों के पीछे होता है, दिल में और जहन के अंदर फैसला हो जाता है। पीपल आर नॉट बींग डिफीटेड इन ग्राउंड एंड फील्ड, generals are defeated in minds and hearts. generals जो जंगे हारते हैं ना, वो मैदानों में नहीं हारते। जंगे जो हारी जाती हैं वो जहनों और दिलों के अंदर हारी जाती हैं। जब आप ये फैसला कर लेना कि हमारे पास जो इल्म है वो इल्म नहीं है, तो आपके इल्म को बचाने के लिए अल्लाह जमीन पे नहीं आएगा, वो किसी दूसरी कौम को खड़ा कर देगा। सवाल यह कि आप उसको इल्म को इल्म मानते हैं या नहीं मानते। जिस इल्म पे आपको भरोसा होता है वो तरक्की करता है, और जिस इल्म पे आपको भरोसा नहीं होता वो फना हो जाता है। वो इल्म फना नहीं होता, उस इल्म को लेके चलने वाले लोग मर जाते हैं। फिर कोई मिरेकल ही हो तो वो कोई इल्म दोबारा पैदा होगा। ठीक है भाई, अभी हम इसको यहीं पर रोक लेते हैं।
आपको मौजूद गुफ्तगू ये अंदाजा हो